नमस्कार, आज हम एक बेहद गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित। ये विचार अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित उनके एक उद्बोधन से हैं, यज्ञ एक शिक्षण भी उच्च स्तरीय विज्ञान भी। हम यज्ञ को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं बल्कि उसके ज्ञान और विज्ञान दोनों पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे।
जी बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ को केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं माना, उन्होंने इसे जीवन जीने का एक तरीका, एक पूरी पद्धति बताया और साथ ही एक बहुत एडवांस्ड साइंस भी।
हाँ, और आज के समय में ये और भी जरूरी लगता है समझना।
बिल्कुल।
तो पहले ज्ञान पक्ष की बात करें।
जी।
मतलब यज्ञ हमें सिखाता क्या है? आपने बताया था गुरुदेव ऋग्वेद के पहले मंत्र का जिक्र करते हैं।
हाँ, अग्नि मिले पुरोहितम।
हाँ, अग्नि पुरोहित है, मार्गदर्शक है, लेकिन ये बोलकर नहीं सिखाती।
अच्छा, फिर कैसे?
अपने चरित्र से। अग्नि का जो स्वभाव है वही उसकी शिक्षा है। कर्म का असर आप देखिए शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। सही कहा। तो क्या मुख्य शिक्षाएं हैं अग्नि से?
मुख्य रूप से 6 शिक्षाएं मानी जाती हैं।
ओके।
पहली है प्रकाश।
अच्छा,
अग्नि हमेशा प्रकाश देती है ना?
हाँ बिल्कुल।
इसका मतलब है कि इंसान को भी ज्ञानी होना चाहिए, आत्मबोध का प्रकाश।
ओके।
अपने अंदर का जो अंधेरा है, अज्ञान है, उसे मिटाना। ये सिर्फ बाहर की लाइट नहीं, अंदर की जागृति है।
अंदर की जागृति। और दूसरी शिक्षा?
दूसरी है ऊष्मा, गर्मी।
अच्छा।
अग्नि जब तक है गर्म है, सक्रिय है, ऊर्जा है उसमें।
तो मतलब हमें भी सक्रिय रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल, कर्मयोगी बनना। पूज्य गुरुदेव ने कर्म पर बहुत जोर दिया।
ओके।
वो कहते थे भाई निष्क्रिय मत रहो।
हाँ।
काम करते करते अगर घिस भी जाओ तो सम्मान की बात है, अपमान की नहीं।
काम चोरी की निंदा है इसमें।
जी। तीसरी शिक्षा है ऊर्ध्वगमन।
ऊर्ध्वगमन मतलब ऊपर उठना।
हाँ, अग्नि की लौ को देखिए, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, चाहे आप लकड़ी को कैसे भी रखें।
हाँ ये तो है।
ये सिखाती है कि हमारे विचार, हमारे लक्ष्य, हमारे आदर्श हमेशा ऊंचे होने चाहिए, नीचे नहीं गिरना, अन्याय के सामने, पतन के सामने झुकना नहीं।
ये तो जीवन में एक मजबूती और नैतिकता की बात हुई। अच्छा, चौथी शिक्षा?
चौथी है आत्मसात्करण। अग्नि के संपर्क में जो भी आता है वो उसे अपने जैसा ही बना लेती है, लकड़ी हो, घी हो, सब अग्नि रूप हो जाते हैं।
अच्छा,
इसका सामाजिक मतलब क्या हुआ?
इसका संदेश है कि हमें भी दूसरों को अपने जैसा श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो कहते हैं ना, कृणवंतो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, ये वही भावना है।
वाओ। और पांचवी छठी शिक्षा, अपरिग्रह और वितरण, ये जुड़ी हुई है क्या?
हाँ बिल्कुल जुड़ी हुई है। अपरिग्रह मतलब संग्रहण न करना। अग्नि कुछ जमा नहीं करती, सब जलाकर हवा में वातावरण में फैला देती है, भस्मांत क्वम शरीरम।
और वितरण मतलब बांटना। जी, जो भी अग्नि को मिलता है वो उसे ऊष्मा और प्रकाश के रूप में बांट देती है। यही शिक्षा मनुष्य के लिए है। संग्रह पाप है, गुरुदेव कहते थे, कमाओ, अपनी जरूरत रखो और बाकी समाज में बांट दो। मिल बांट कर खाना, अपनी क्षमताएं समाज को देना, यही यज्ञ जीवन है।
ये 6 शिक्षाएं तो वाकई व्यक्ति और समाज दोनों को बदलने की ताकत रखती हैं। समानता का भाव भी इसमें है ना, जाति लिंग धन से परे।
निश्चय ही।
ये तो हुई ज्ञान की बातें, पर गुरुदेव ने इसे उच्च स्तरीय विज्ञान भी कहा। ये बात मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है, एक प्राचीन परंपरा में इतना गहरा विज्ञान कैसे?
ये सचमुच अद्भुत है और इसके कई वैज्ञानिक पहलू हैं। पहला और शायद सबसे आसानी से समझ आने वाला है प्रदूषण निवारण।
प्रदूषण यज्ञ से?
हाँ, सोचिए हम इंसान और हमारी मशीनें कितना प्रदूषण फैलाते हैं हवा में, गंध के रूप में। यज्ञ में जब हम औषधीय लकड़ियां, घी और दूसरी सुगंधित हवन सामग्री डालते हैं तो उससे जो धुआं उठता है
वो हवा साफ करता है।
हाँ, वो वायु प्रदूषण को, हानिकारक कीटाणुओं को और दुर्गंध को नष्ट करता है। इसे आप एक तरह का पर्यावरण शुद्धिकरण टैक्स समझ सकते हैं जो हम प्रकृति को चुका रहे हैं।
अच्छा, और दूसरा पॉइंट था सूक्ष्म वितरण, मतलब हवन सामग्री नष्ट नहीं होती।
बिल्कुल नहीं, स्थूल रूप से वो हमें दिखना बंद हो जाती है लेकिन वो सूक्ष्म रूप में मतलब गैस फॉर्म में हवा में बदल जाती है और फिर हवा के साथ फैलकर बहुत दूर तक जाती है।
और उसका फायदा सबको मिलता है?
हाँ, सभी को, मनुष्य, देवता, ऋषि, पशु पक्षी, कीट पतंगे, वनस्पति, सब तक उसका पोषण पहुंचता है। तभी तो शास्त्रों में कहा यज्ञं उदेवानाम अन्न, यज्ञ देवताओं का अन्न है।
ये तो कमाल है, एक तरह से ऊर्जा और पदार्थ का रूपांतरण हुआ। और यज्ञोपैथी ये क्या है?
चिकित्सा पद्धति?
जी,
यज्ञोपैथी एक बहुत शक्तिशाली चिकित्सा पद्धति है। इसमें क्या करते हैं कि विशेष रोगों के लिए विशेष औषधियों को हवन सामग्री में मिलाते हैं,
और फिर
जब वो औषधि अग्नि में जलती है तो उसका एकदम सूक्ष्म रूप धुएं के साथ सांस के जरिए सीधे शरीर में पहुंचता है। पाचन तंत्र से जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अच्छा, सीधे खून में या नर्वस सिस्टम में?
हाँ, ऐसा माना जाता है। और ये न सिर्फ शारीरिक रोगों पर बल्कि मानसिक रोगों पर भी असर करता है, जैसे क्रोध, चिंता, स्वार्थ, इन पर भी। डॉक्टर कुंदनलाल अग्निहोत्री जी ने इस पर काफी शोध भी किया था। पूज्य गुरुदेव तो 16 संस्कारों को भी एक तरह का मानसिक स्वास्थ्य का यज्ञ इंजेक्शन मानते थे।
ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, चौथा वैज्ञानिक पक्ष था परजन्य निर्माण। ये परजन्य सिर्फ बारिश वाला बादल है?
नहीं नहीं, परजन्य का अर्थ यहाँ ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ पानी की बूंदे नहीं, ये एक सूक्ष्म जीवन ऊर्जा है, एक प्राण तत्व है।
प्राण तत्व?
हाँ, यज्ञ से ये परजन्य यानी प्राण तत्व उत्पन्न होता है, फिर ये बारिश और हवा के साथ मिलकर अन्न में, वनस्पतियों में, जड़ी बूटियों में समा जाता है, उन्हें ज्यादा पौष्टिक, ज्यादा प्राणवान बनाता है। आज जो खाने में वो पहले जैसी बात नहीं रही, उसका एक कारण शायद इसी प्राण तत्व की कमी है।
यानी भोजन की गुणवत्ता भी यज्ञ से जुड़ी है। और पांचवा बिंदु था वातावरण परिशोधन। ये सिर्फ हवा साफ करना नहीं है?
नहीं, ये स्थूल हवा के साथ साथ सूक्ष्म वातावरण को भी शुद्ध करता है।
सूक्ष्म वातावरण मतलब लोगों की सोच, भावनाएं?
बिल्कुल, लोगों की सोच, उनकी मानसिकता, समाज का जो एक ओवरऑल माहौल होता है उसे भी यज्ञ प्रभावित करता है। जो नकारात्मकता है, आसुरी वृत्तियां हैं, उनके असर को कम करके एक पॉजिटिव, एक आध्यात्मिक माहौल बनाता है।
इसीलिए शायद पुराने जमाने में बड़े बड़े यज्ञ होते थे।
हाँ,
जैसे अश्वमेध या राजसूय यज्ञ।
हाँ, श्री राम का अश्वमेध यज्ञ या पांडवों का राजसूय यज्ञ, वो केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थे, वो पूरे राष्ट्र, पूरे समाज के वातावरण की शुद्धि और संतुलन के लिए होते थे।
बहुत गहरा विज्ञान है ये तो। अच्छा, एक और बात, यज्ञ के साथ अक्सर बलि शब्द जुड़ा रहता था, लेकिन गुरुदेव ने देव दक्षिणा की बात कही, इसमें क्या फर्क है?
ये पूज्य गुरुदेव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बलि की जो पारंपरिक धारणा थी, जिसका कई बार गलत मतलब निकाला जाता था, उसे सुधारा। उन्होंने कहा यज्ञ में देव दक्षिणा अनिवार्य है।
तो देव दक्षिणा क्या है?
देव दक्षिणा का मतलब है दोहरा समर्पण। पहला, अपनी बुराइयों का त्याग, अपने दोष, अपनी कमजोरियां, अपना अहंकार, अपनी गलत आदतें, इनकी बलि देना।
अच्छा, बुराइयों की बलि।
और दूसरा समर्पण है समाज में अच्छाई बढ़ाने के लिए, सत प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए। अपने पास जो भी साधन है, अपना समय, अपना ज्ञान, अपना पुरुषार्थ, अपना प्रभाव, अपना धन, उसका एक हिस्सा लगाना। ये सिर्फ दान नहीं है, ये यज्ञ को पूरा करने के लिए जरूरी है। इससे व्यक्ति भी बदलता है और समाज भी।
तो कुल मिलाकर यज्ञ सिर्फ अग्नि में कुछ डालना नहीं है, ये तो ज्ञान, कर्म, विज्ञान और परमार्थ सबका संगम है, व्यक्ति और समाज दोनों को ऊपर उठाने का रास्ता। गुरुदेव ने तो इसे साक्षात जीवंत विष्णु भगवान कहा है।
बिल्कुल सही। और अब हमारे लिए सोचने की बात यह है कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम रोज अग्निहोत्र शायद ना कर पाएं, पर यज्ञ के जो मूल सिद्धांत हैं, निस्वार्थ कर्म करना, ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर और बाहर फैलाना, मिल बांटकर चीजों का उपयोग करना, और अपने आसपास के माहौल को, चाहे वो भौतिक हो या वैचारिक, उसे शुद्ध रखने की कोशिश करना।
हाँ,
क्या हम इन सिद्धांतों को अपने रोज के जीवन में, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं? यही शायद आज के युग का यज्ञ होगा। इस पर विचार करना जरूरी है।